युकांड का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले सभी पढ़ने वाले भाई बहनों को बताना है, गोमठ साथ जीवकांड की क्लास प्रारंभ हो रही है। सर्वप्रथम इस क्लास में भाग लेने वाले भाई बहनों को बताना है कि जो परीक्षा हमने घोषित की कि 30 दिसंबर को होगी, लेकिन कुछ मैसेज आए कि आजकल छुट्टियों का दौर चल रहा है और ईसवी सन का वर्ष भी समापन और नया साल का प्रारंभीकरण हो रहा है, इसलिए लोग यात्रा पर ज्यादा रह रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों की सूचनाएं आई हैं कि परीक्षा कल ना लेकर के आप आगे के सप्ताह में लें, तो कल की परीक्षा स्थगित की जाती है आप सब लोगों की सुविधा को देखते हुए, और उसके बाद 1 तारीख के बाद हम तारीख की घोषणा करेंगे परीक्षा की तैयारी। कुल मिलाकर के एक दूसरे को आप सूचना कीजिएगा कि कल गोमठ साथ जीवकांड की जो परीक्षा होने वाली थी वो कल नहीं हो करके आगे की घोषणा के अनुसार तारीख निश्चित की जाएगी। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। गोमठ साथ जीवकांड और संस्कृत व्याकरण, इसका अध्ययन आप लोग रुचि पूर्वक कर रहे हैं, इसीलिए समय से उपस्थित होकर आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से अध्ययन कराया जा रहा है, जहां भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में अपनी पुत्री ब्राह्मी सुंदरी को सर्वप्रथम विद्या अध्ययन कराया, नारी शिक्षा का सूत्रपात किया, अपने सभी पुत्रों को भी समस्त विद्या और कलाओं में पारंगत किया। ऐसी भूमि पर आज इस युग की अभिनव ब्राह्मी माता के रूप में गणी प्रमुख ज्ञानवती माता जी विराजमान हैं। आप सबके दर्शन बराबर होते हैं। पूज्य ज्ञानमती माता का 71वां चातुर्मास अयोध्या की धरती पर संपन्न हुआ है और निरंतर सुबह से शाम तक बराबर तीर्थ यात्रियों को दर्शन देना, भगवान के दर्शन माला फेरना, भगवान का नाम लेना, लेखन कार्य करना, 10-12 ग्रंथों का सुबह से शाम तक व्यक्तिगत स्वाध्याय करती हैं, चारों समय के सामूहिक स्वाध्याय में अपना पूरा सानिध्य और छत्र छाया प्रदान करती हैं। ऐसी पूज्य गणी ज्ञानमती माता की मंगल प्रेरणा से, उनकी आशीर्वाद से आप तक ये अध्ययन का क्रम पहुंचाया जा रहा है। तो इसमें आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य की अमूल्य कृति गोमठ साथ जीवकांड, जिसे सार रूप में हमें पूज्य माता ने संक्षेप में प्रदान किया है, उसका अध्ययन निरंतर जारी है। तो मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ होता है। सिद्धम शुद्धम पणनीय जिनेन्द्रवरनेमि चन्द्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम् जीवस्य परुवणम् मोक्षम्। गुण रूपी रत्नों के भूषण का जिनके नित्य ही उदय पाया जाता है, अर्थात जो नेमिनाथ भगवान अपनी आत्मा के गुण रत्नों से विभूषित हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करके नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने 20 प्ररूपणाओं के द्वारा जीव द्रव्य के कथन की जो प्रतिज्ञा की, उसमें से आपने बहुत कुछ अध्ययन किया और उस प्ररूपणा के अंतर्गत पहली प्ररूपणा गुणस्थान, दूसरी जीव समास, इनके बारे में जानकारी ली है और तीसरी पर्याप्ति प्ररूपणा पर हम चल रहे हैं। आज 36 नंबर की गाथा आएगी। कल 34 और 35 गाथाओं के माध्यम से आपने पर्याप्ति का लक्षण जाना कि कोई भी जीव शरीर को धारण करने से पहले उसके योग्य परमाणुओं के लायक अपनी शक्ति को प्राप्त करता है, बस उसी शक्ति का नाम है पर्याप्ति। पर्याप्ति का पूर्ण होना और जिनके नहीं वो पूर्णता आ पाती वो अपर्याप्त कहे जाते हैं। पर्याप्ति के 6 भेद बताए, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये सारी पर्याप्तियां हमारे और आपके पास में है, क्योंकि हमने मनुष्य गति में जन्म ले रखा है। अब इसके अंदर पर्याप्तियों के बारे में आपने जब जाना, पुनः आपको एक बात और जानना है कि अपर्याप्त अवस्था के 2 भेद होते हैं, यानी अपर्याप्त जीवों के 2 भेद होते हैं, एक निर्वृत्त पर्याप्त और एक लब्धे पर्याप्त। 2 भेद कौन से हैं? निर्वृत्त पर्याप्त और लब्धे पर्याप्त। तो निर्वृत्त पर्याप्ति का मतलब है जिनके पर्याप्तियां बन रही हैं, अभी पूरी नहीं हुई हैं, किंतु अंतर मुहूर्त के अंदर जिनके नियम से पर्याप्ति पूर्ण हो जाएंगी, ऐसे जीवों को निर्वृत्त पर्याप्त कहा है। चाहे वो सम्मोक्षण अवस्था में है, चाहे गर्भावस्था में है, उनकी पर्याप्तियां पूर्ण होने ही वाली है, तभी उनका शरीर, इंद्रियां, सब कुछ परिपूर्णता को प्राप्त होंगी। और जिनकी पर्याप्ति ना तो अभी पूर्ण हुई है और ना कभी पूर्ण होंगी, पर्याप्ति पूर्ण होने के काल से पहले ही जिनका मरण हो जाता है, ऐसे जीवों को लब्ध पर्याप्त जीव कहते हैं, यानी उनकी पर्याप्तियां पूर्ण ही नहीं होंगी, ऐसे जीवों को लब्ध पर्याप्त जीव कहते हैं। तो ये बात आपको विशेष रूप से जाननी है। अब इसके आगे 36 नंबर की गाथा में क्षुद्र भावों की संख्या कही है, यानी कि जो ऐसे जीव हैं जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, ना पूर्ण होंगी, केवल जन्म मरण करना ही जिनकी नियति होती है, ऐसे लब्धि पर्याप्तक जीवों की क्षुद्र भावों की संख्या बताई जा रही है। गाथा नंबर 36। तिन्निसया सत्तीसा छावट्टि सहस्रगाणि मरणानि अन्तो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद भवा। एक साथ पढ़िएगा सब लोग। तिन्निसया छत्तीसा छावट्टि सहस्रगाणि मरणानि अन्तो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद भवा। त्रीणि शतानि षट्त्रिंशत् षट्षष्टिसहस्रकाणि मरणानि अन्तर मुहूर्त काले तावन्तश्चैव क्षुद्र भवाः। अर्थात क्या कहते हैं, एक अंतर मुहूर्त में एक लब्ध पर्याप्त जीव 66,336 बार मरण और उतने ही भावों को, जन्मों को धारण कर सकता है। 66,336 क्या होता है संख्या, सुन करके भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव। लेकिन ये कहा जा रहा है केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान ने अपने दिव्य केवल ज्ञान के अंदर जो कुछ जीवों की परिणति को देखा पाया उसका वर्णन किया। एक लब्ध पर्याप्त जीव यदि निरंतर जन्म और मरण करता रहे तो अंतर मुहूर्त काल में 66,336 जन्म और इतने ही मरण कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता। इन्हें क्षुद्र भाव भी इसीलिए कहा गया है। क्षुद्र माने सबसे छोटा, जिससे अधिक भाव हो ही नहीं सकते, सबसे अल्प समय वाला क्षुद्र भाव कहलाता है। इससे अल्प स्थिति वाला अन्य कोई भी भाव नहीं होता। इन भाव में से प्रत्येक का काल प्रमाण श्वास का 18वां भाग है। इसको आपको ध्यान देना है। छड़ाला के अंदर पढ़ते ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार ताते चैथा वर्तन धरे। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बड़ा सार भरा है। पंडित दौलत राम जी ने भी इन सब ग्रंथों का अध्ययन करके ही छह ढाला बनाया, बताया उसके माध्यम से कि जीव चारों गतियों में किस प्रकार से परिभ्रमण करता रहता है। जब भी छह ढाला की बात आती है तो स्मरण में आ जाता है कि आरिका श्री रत्नमती माता जी थी, जो ज्ञानमती माता जी की जन्मदात्री माँ थी मोहिनी, और उन्होंने दीक्षा लेकर रत्नमती नाम प्राप्त किया। मेरी भी जन्मदात्री माँ रही है, वो गृहस्थ अवस्था में भी और साधु बनने के बाद भी छह ढाला को सुने बिना कभी भी सोती नहीं थी। हमारे संग में जो बीना दीदी है ना, छोटी सी थी, लेकिन इसको शुरू से उन्होंने कहा बेटी छह ढाला सुनाओ, सुनाते सुनाते इसको पूरा छह ढाला याद हो गया। आज भी याद करती है कि मैं रत्नमती माता जी को छह ढाला सुनाती थी। तो छह ढाला क्यों सुनते हैं, क्यों सुनाते हैं, क्यों पढ़ते हैं? उसके अंदर चारों गतियों के दुख का इतना मार्मिक वर्णन है कि जो छह ढाला को पढ़ करके उन दुखों को याद करके और संभल नहीं सका मनुष्य जन्म में, उसने छह ढाला नहीं पढ़ी समझो। तो उसके अनुसार, इन ग्रंथों के अनुसार ही उन्होंने उसमें दिया है कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कौन करते हैं। शुद्र भाव को धारण करने वाले लब्ध पर्याप्तक जीव, एक इंद्रिय जीव भी जन्म मरण करते हैं, तो उनकी भावों का ये प्रमाण बताया गया है। और उसमें जो डिटेल किया गया उसको भी आपको थोड़ा सा जान लेना है कि एक साथ में एक बार में जब जीव लब्ध पर्याप्तक जीव की जघन्य और उत्कृष्ट दोनों की ही आयु स्थिति अंतर मुहूर्त है। देखो, अंतर मुहूर्त के भी अनेक अंतर मुहूर्त भेद होते हैं। अंतर मुहूर्त एक समय वाला भी होता है, अंतर मुहूर्त 48 मिनट वाला भी अंतर मुहूर्त होता है। तो एक समय का जघन्य अंतर मुहूर्त है, 48 मिनट का उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, और उसके बीच का काल मध्यम अंतर मुहूर्त कहलाता है। तो जो लब्ध पर्याप्तक जीवों की, यानी जिनकी पर्याप्तियां ना पूर्ण हुई है ना होंगी और उससे पहले वो मर जाएंगे, ऐसी स्थितियों को हमने आपने न जाने कितनी बार धारण किया है। एक इंद्री में भी गए, दो इंद्री में भी गए, सारी इंद्रियों को प्राप्त करके और हमने वहां पर आत्मज्ञान को नहीं पाया, किसी का संबोधन भी नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से न जाने कितने जन्मों के पुण्य को संचित करने के प्रभाव से आज हमें आपको मनुष्य की गति मिली है। तो यह अंतर मुहूर्त जो है, एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण यहाँ पर बताया है। इस प्रकार के लब्ध पर्याप्तक जीव एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री पर्यंत सब में ही पाए जाते हैं। लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्री भी होते हैं, आप इसकी डिटेल घुमटसार जीवकांड वगैरह के अंदर पढ़िएगा। गाय के शरीर में भी जो सूक्ष्म जीव उनके हो जाते हैं, वो भी समूचन होते हैं, लब्ध पर्याप्त में जन्मते हैं, मरते हैं। आप आज ऊन क्यों नहीं पहनते? हमारे साधु, आपके दिगंबर जैन साधु, कोई ऊलन को हाथ भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि जो पशु की बालों से ऊन बनता है, उसमें प्रतिक्षण समूक्षण लब्ध पर्याप्तक जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। ऐसे एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक जीव सब लब्ध पर्याप्तक की क्वालिटी वाले भी होते हैं। एक जीव एक अंतर मुहूर्त में लब्ध पर्याप्तक अवस्था में अधिक से अधिक 6,336 बार जन्म और मरण कर सकता है, इतने ही भावों को धारण कर सकता है, उतनी बार मरण कर सकता है। इसलिए इन भावों को क्षुद्र भाव कि इससे छोटा कोई भी समय वाला भाव नहीं होता। इसलिए क्षुद्र भाव का मतलब ही यही है कि इनसे अल्प स्थिति वाला अन्य और कोई भी भाव नहीं होता। और प्रत्येक भाव का काल इसमें श्वास का 18वां भाग बताया है, तब 66,336 भावों के श्वासोच्छ्वास का जो प्रमाण आया, तो 66,336 को 18 से भाग कर दिया, तब उसमें निकलता है 3685 सही 1/3, अर्थात इतने श्वासोच्छ्वास के समूह का प्रमाण एक अंतर्मुहूर्त होता है। और पृथ्वी का एक से लेकर पंचेंद्री तक लब्ध पर्याप्तक जीवों के क्षुद्रभव मिलाकर के 66,336 हो जाते हैं। तो 3773 उच्छ्वासों का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त कितने मिनट का? 48 मिनट का। कभी घड़ी रख लो सामने और देखो 48 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं। तो उनका उत्कृष्ट प्रमाण बताया है कि 3773 बार सांस लेने से 48 मिनट पूरे होते हैं, यानी 48 मिनट के अंदर इतने श्वासोच्छ्वास लिए जाते हैं। तो अलग अलग इसमें थोड़ा सा और आप पर्याप्ति प्ररूपणा का सार पढ़िएगा, उसमें अलग अलग एक एक जीवों के अलग अलग भाव की लब्ध पर्याप्तक जीवों की संख्या बताई है। तो आप उसको जानिएगा कि एकेंद्रीय जीवों के 66,132 भावों को धारण करने की शक्ति रहती है, यानी कि उनके ज्यादा से ज्यादा 66,132 भाव भी धारण कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते। और फिर बाद में लिया है असंगी पंचेंद्रीय लब्धि पर्याप्तक के 8, संगी पंचेंद्रीय लब्धि पर्याप्तक के 8, मनुष्यों के 8, इस प्रकार से कुल 24 की संख्या आई। और अब 11 प्रकार के लब्धि पर्याप्तक जीवों को जाने आप डिटेल में थोड़ा समय बता रही हूं, क्योंकि एक बार नहीं समझ में आए तो भी ये प्रवचन आपको encyclopedia.jainism.com में ऑडियो प्रवचन मिल जाते हैं, उनको सर्च करके आप बार बार सुन सकते हैं। तो आप इन भेदों को नोट कीजिएगा, स्थूल पृथ्वी सूक्ष्म पृथ्वी, स्थूल जल सूक्ष्म जल, स्थूल अग्नि सूक्ष्म अग्नि, स्थूल वायु सूक्ष्म वायु, स्थूल साधारण सूक्ष्म साधारण और प्रत्येक वनस्पति। ये 11 प्रकार के जो जीव हुए, इन 11 प्रकार के लब्धि पर्याप्तकों में से प्रत्येक के 6012 भाव होते हैं। तब 6012 को 11 से गुणा किया गया, क्योंकि ये 11 प्रकार के हैं, तो 11 से गुणा किया गया तब 66,132 की संख्या आई। ये एकेंद्रीय लब्धि पर्याप्तक के उत्कृष्ट भाव हो गए, चाहे पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब एक इंद्रिय जीव हैं, और इनमें लब्धि पर्याप्तक जीव जो हैं इतने भाव धारण करने वाले हैं। अब इस प्रकार से पर्याप्त अवस्था को जान करके अपने को ये संक्षेप में जानना है, अधिक डिटेल में मैं आपको नहीं ले चलूंगी, कि हम पर्याप्त हैं, हमारी पांचों इंद्रियां हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्तियां हमें मिली हैं। क्या साध्या नहीं करते तो इन चीजों का हमें ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन अपने ही पास ये चीजें हैं और इनसे सहित होकर के हम मन सहित प्राणी बन करके और इस संसार के अंदर अपने मानव जीवन को यात्रा आदि करके, भगवान की भक्ति करके, देव सास गुरु की भक्ति करके और अपने मानव जीवन को सफल करना, यही पर्याप्तियों को पाने का सार रहता है। ये आज के घुमट सार जीव का अनुसार का स्वाध्याय हुआ। कल से मैं प्राण प्ररूपणा में आगे चलूंगी, क्योंकि हमने पहले ही आपको सूचना दे दी है कि कल 30 तारीख को होने वाली परीक्षा स्थगित की जाती है, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड आई है कि आजकल हम लोग ज्यादा लोग यात्रा पर निकल रहे हैं, इसलिए परीक्षा देने में कठिनता होगी। तो हम 1 तारीख के बाद परीक्षा की तारीख पुनः आपको घोषित करेंगे, तब आपके गोमटसार जीवकांड की परीक्षा ली जाएगी। अब हम चलते हैं